आज जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं उसका विषय है जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बालकिशन राय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी धन्यवाद। आज का विषय इस तरह का है जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है और मैं विद्यार्थियों को ये कहूंगा कि आप खुद इस एक सामाजिक समस्या या इसको राष्ट्रीय समस्या कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारे देश का वह सभी के लिए चिंता का विषय है। तो इसके विभिन्न पक्षों पर आज हम चर्चा करेंगे और हिंदी विषय के अंतर्गत इसको शामिल करने का उद्देश्य यह है कि आप साहित्य तो पढ़े ही, साथ साथ जो सामाजिक चुनौतियां हैं, सामाजिक जो विकृतियां हैं समाज की, उन पर भी आप गौर करते चलें। और आजकल इंटरडिसिप्लिनरी की बात तो हो रही है कि विभिन्न विषयों का समावेशन किया जाए, तो उस दृष्टि से भी आज का जो विषय है वह बड़ा ही प्रासंगिक है
जी।
तो मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा और इसमें मुख्य जो पक्ष होंगे वह होंगे जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप, दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि का विस्तार, जनसंख्या वृद्धि के कारण और भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण, जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में विज्ञान द्वारा किए गए उपाय और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता। तो ये चर्चा बिंदु आज के होंगे। तो शिक्षार्थियों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमने विज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने ये जाना कि आज के जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है और विज्ञान ने किस तरह से पूरे संसार के स्वरूप को बदल दिया है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह भी हमने देखा, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, रसायन विज्ञान का क्षेत्र हो या गणित का क्षेत्र हो। तो उन चर्चाओं से यह स्पष्ट तो हुआ कि हमारे देश में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान के प्रसार के बावजूद आज भी हम विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं? इसका कारण सबसे बड़ा है जनसंख्या अर्थात बढ़ती हुई आबादी। शिक्षार्थियों, जनसंख्या अधिक होने के कारण हर आदमी तक सही ढंग से विज्ञान का लाभ नहीं पहुंच पाता और यही कारण है कि हमारे देश को जितना विकास करना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, तो उसे आपको जरूर समझना चाहिए कि दो प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर का अर्थ है प्रतिवर्ष प्रति हजार व्यक्ति पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या, और दूसरी ओर मृत्यु दर होता है प्रतिवर्ष प्रति हजार व्यक्ति पर मृत व्यक्तियों की संख्या। तो इन दोनों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि का आकलन किया जाता है, यानी एक साल में पैदा हुए बच्चों की संख्या में से उस साल में मरने वालों की संख्या को घटा दें तो जनसंख्या वृद्धि का पता लग जाता है। तो यह एक जो है कैलकुलेशन करने का तरीका है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि कहाँ होती है? जी हाँ, भारत में। और यह आश्चर्य का विषय है कि पूरी दुनिया में हर साल 8 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि होती है, जिसमें से 2 करोड़ की वृद्धि अकेले भारत करता है। अर्थात पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या वृद्धि का 1/4 हिस्सा अकेले भारत करता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं। और इसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो देश है वह दूसरा सबसे बड़ा देश है विश्व में। पहले स्थान पर चीन है, लेकिन इसके विपरीत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान सातवां है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे यहाँ साधन कम हैं और जनसंख्या अधिक है। और शिक्षार्थियों, ऐसा अनुमान है कि 2030 तक हमारी आबादी 150 करोड़ को भी पार कर जाएगी। अब आप सोचें कि कितनी भयावह स्थिति है। आप भी अपने समाज में आसपास देखते होंगे और ये महसूस करते होंगे कि बहुत से लोगों को जनसंख्या के बारे में ज्ञान नहीं है, वे अनपढ़ हैं, वे जागरूक नहीं हैं। भले ही वे गरीबी में रहते हों, लेकिन उनके भी चार चार पांच पांच बच्चे आप देखते होंगे। हालांकि उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बोध नहीं है कि जिन चार पांच संतानों को उन्होंने जन्म दिया है उनका क्या होगा, और वे समाज के लिए, देश के लिए भार बन जाते हैं। सरकार की कोई भी योजना हो वह इसीलिए लागू नहीं हो पाती क्योंकि जनसंख्या का इतनी तेजी से विस्तार होता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो भारत की 70% आबादी गांव में रहती है और जन्मदर भी वहां पे ज्यादा है। रोजगार की तलाश में गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो शहरों में जनसंख्या वृद्धि भी काफी तेज हो गई है। दिल्ली का अगर आप उदाहरण लें तो यहाँ देखेंगे कि पूरे देश से लोग आते हैं और इसीलिए इस समय दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग हो गई है। तो इस तरह से हर स्तर पे परेशानी हो रही है, चाहे आप रहने के स्थान को देख लें या पीने के पानी को देख लें या बिजली या यातायात की समस्या को देख लें, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें वहां आपको परेशानी दिखाई देगी। अगर विश्व में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया की कुल आबादी 7 अरब के करीब है और जैसा कि मैंने बताया कि जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक हमारे देश में है और 1900 से 1975 तक दुनिया में कुल जनसंख्या वृद्धि का 80% हिस्सा विकासशील देशों का रहा और अब वह बढ़कर 98% तक पहुंच गया है। अफ्रीकी देशों में अगर आप देखें तो जनसंख्या वृद्धि का जो औसत है वह 2.5% है और कई मुस्लिम देशों में जनसंख्या वृद्धि का औसत दर 2.2 है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि जो सार्क कंट्रीज हैं उनमें 1.9% आंका गया है। तो यह जो जनसंख्या की वृद्धि है इनकी वजह से बेरोजगारी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और न जाने कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपकी अध्ययन सामग्री में सन 2000 का विवरण दिया गया है क्योंकि यह किताब पहले बनी है और उस समय का आकलन यह कहता है कि भारत की आबादी 1 अरब थी उस समय और इस समय लगभग 132 करोड़ जनसंख्या हो गई है और महिलाओं और पुरुषों का जो दर है वह भी काफी समान है। यहाँ यह भी देखने की बात है कि यह जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वह खाद्यान्न की समस्या और पीने की पानी की समस्या को पैदा कर सकती है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में देखिए अनेक कारण हो सकते हैं और एक कारण यह है कि तरह तरह की दवाइयाँ चिकित्सा पद्धतियां और वैज्ञानिक उपकरण की जो खोज और प्रयोग विज्ञान ने किया है उससे मृत्यु दर पर तो नियंत्रण पा लिया, लेकिन जन्म दर की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जनसंख्या बढ़ती गई और लोगों ने तेजी से अपने विकास और जीवन की जो सुविधाएं थी उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया, वैज्ञानिक उपकरणों का अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दिया जिससे पर्यावरण प्रदूषण शुरू हो गया, ओजोन परत में छेद की आशंका जताई जा रही है और जैसा मैंने बताया कि लोग शहरों की तरफ रोजगार के लिए भाग रहे हैं इसलिए गरीबी है, बेरोजगारी है, पारिस्थितिकीय समस्या है, एड्स जैसे भयानक रोगों की समस्या है। तो इस तरह से जनसंख्या के कारण हमारे देश ने अनेक संकट खड़ा कर लिए हैं और आप भी अखबारों को पढ़ते होंगे या टेलीविजन और रेडियो पर सुनते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हमारे देश में कितनी चुनौतियां हैं और इन समस्याओं को बढ़ाने में व्यक्ति की बड़ी भूमिका है और जागरूकता की कमी है। इसीलिए जिन देशों में विज्ञान और विकास कार्यों में विज्ञान और विकास कार्यों में व्यक्ति की सहभागिता है और एक तरह से हम कहें कि जन जागरूकता है वहाँ पर इस समस्या को बहुत कुछ नियंत्रित किया गया है, लेकिन हमारे देश में शायद उसकी काफ़ी अभी कमी है। अगर अपने देश की बात करें और प्रमुख कारणों का जिक्र करें तो पहला कारण हम दे सकते हैं कि हमारे देश में बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं है। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ मलेरिया, कालाजार, टीवी, टेटनस, पोलियो जैसे अनेक बीमारियों पर विज्ञान ने नियंत्रण पाया है और स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियों का उपचार भी ढूंढ लिया है। तरह तरह के चिकित्सा उपकरणों का विकास हुआ है, देश के कोने कोने में अस्पताल खोले गए हैं और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप देखते होंगे कि कई सरकारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जनता को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। और आदमी की जो औसत उम्र है वो भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि चिकित्सीय जो आविष्कार हो रहे हैं उससे जन्म दर पर नियंत्रण तो नहीं हो पाया लेकिन मृत्यु दर पर काफी नियंत्रण हो गया है। और आप अगर इंटरनेट पर जाकर आंकड़े देखें तो आपको लगेगा कि हमारी जो वृद्धि दर है जनसंख्या की उसमें प्रत्येक वर्ष कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो यह साबित करता है कि विज्ञान की प्रगति का हमने लाभ नहीं उठाया। जैसे गर्भ निरोधक जो विधान किए गए हैं तरह तरह के, या जो है वंध्याकरण की बात आपने सुनी होगी, परिवार नियोजन की बात सुनी होगी, तो इस तरह के जो प्रयास करने चाहिए उसका अभाव हमें हर जगह दिखाई देता है। दूसरा एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अशिक्षा का स्तर है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण जो है हमारे देश के में अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा प्रसार है। बहुत से लोग जो आधुनिक तकनीक होती है जनसंख्या नियंत्रण की उसे नहीं अपनाते हैं और उसकी वजह से जो परिवार नियोजन की जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं वे सब धरी की धरी रह जाती हैं। और लोगों के मन में आज भी आपने कहीं सुना होगा कि यह धारणा बैठी है कि नसबंदी के बाद शरीर कमजोर हो जाता है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी गलतफहमियां हैं और यह जो है ना हमारे समाज के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसीलिए सरकार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से कार्य कर रही है और पाठ्यक्रम में भी इसे रखने का यही कारण था कि एक बच्चों के बीच जागृति हो, उन्हें पता हो कि हमारे देश में किस प्रकार से जनसंख्या एक चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भाषण में कहा था कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर जन जागरूकता फैलानी चाहिए। इसीलिए यह कहा जाता है कि एक और चुनौती हमारे समाज में अंधविश्वास की है। मैंने बताया कि आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो परिवार नियोजन है वह घातक है। उसी तरह से बहुत से लोगों का मानना है कि बच्चे ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसलिए ईश्वर की इच्छा को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस तरह से एक के बाद एक बच्चे पैदा करते जाते हैं। और कई लोगों के मन में यह भी धारणा होती है कि संतान अधिक होने से बच्चे काम में हाथ बटाएंगे और बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परिवार नियोजन या नसबंदी कराने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बहुत सारे अंधविश्वास हैं वह जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में बाधा पहुंचा रहे हैं। उसी तरह से एक प्रमुख कारण और है बाल विवाह, कम उम्र में विवाह। अब आपने भी सुना होगा कि आज भी हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा चल रही है। बहुत से माता पिता मानते हैं कि किशोर होते ही संतान का विवाह कर देना चाहिए, शारीरिक परिवर्तन को वे विवाह की आवश्यकता मानने लगते हैं, जबकि यह भ्रम है। शारीरिक परिवर्तन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लड़का या लड़की शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हों और उनका विवाह कर दिया जाए। इससे बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। अगर लड़के लड़कियों का विवाह किशोरावस्था में होता है तो उसे शारीरिक मानसिक परेशानियां भी देखी जा रही हैं। किशोर जल्दी माँ बाप बन जाते हैं और इसीलिए सरकार ने कानून भी बनाया 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों की शादी नहीं हो सकती। तो कम उम्र की शादी भी है जो वह समाज को विकास में बाधा पहुंचा रही है और आर्थिक समस्या पैदा कर रही है। आश्रितों की संख्या बढ़ती जा रही है, परिवार में कमाने वाले कम हैं और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए यह एक विकट समस्या है। एक और कारण हम देख सकते हैं कि लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करते चले जाना। ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सी मान्यताएं ऐसी चल रही हैं कि लड़का ही पिता की जायदाद का असली वारिस होता है और पिता के साथ रहता है, बेटियां तो पराई होती हैं, तो बेटा ही पिता की सेवा करता है और अंतिम संस्कार तक उसके साथ रहता है। ऐसी मान्यता रखने वाले लोग ये भी सोचते हैं कि अगर शुरू में बेटी नहीं पैदा हुई तो कई कई लड़कियां पैदा करते चले जाते हैं और वे लड़कियों और लड़कों में भेद भी पैदा करते हैं। तो समाज में असमानता भी बढ़ती जा रही है, व्यवहार में भी असमानता है, खान पान में असमानता है। और ये देखा गया है कि लड़कियों पर कई परिवारों में शुरू से ही ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जब वे माँ बनती हैं तो उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। इसीलिए आप कई बार सुनेंगे कि विकलांग बच्चे पैदा होते हैं और उससे भी एक अलग तरह की समस्या पैदा हो ही गई है। इसके अलावा कई पिछड़े इलाके आप देखेंगे जहां मनोरंजन की कमी होती है, और वहाँ भी जो है मनोरंजन का साधन केवल वो बच्चे पैदा करना मानते हैं। इस तरह की भी दिक्कतें कई जो पिछड़े समाज हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसी तरह लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो रही है, और आवास की समस्या, अशिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या आदि अनेक समस्याएं शिक्षार्थियों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य रूप से उत्तरदायी हम सभी हैं, आम जनता है, और जो भोजन की कमी आपको दिखाई दे रही है, संसाधनों की कमी आपको चारों ओर दिखाई दे रही है, उसका कारण भी यही है कि जो लोग जागरूक नहीं हैं वह जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और जो शिक्षित समाज है वह जानता तो सब कुछ है लेकिन वह भी व्यापक रूप से कोई आंदोलन नहीं चला पा रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एक विधेयक भी संसद में लाया जा रहा है कि अधिक से अधिक 2 बच्चे ही हों। तो यह जो सिद्धांत है वह भी कारगर हो सकता है अगर उसको सामाजिक स्वीकृति मिलती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से कितने तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो सबसे बड़ी समस्या पारितंत्रीय समस्या है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो समाज में है वह चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पारितंत्र उस समूचे वातावरण को कहते हैं जिसमें जीवधारी आपसी सहयोग के साथ रहते हैं, जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, नदी तालाब, पर्वत घाटी, खेत, जीव जंतु, ये सभी पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जनसंख्या वृद्धि के कारण इस पारितंत्र में समस्याएं पैदा हो गई हैं। लोगों को रहने के लिए आवास नहीं है, अन्न के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, और इसका परिणाम यह हुआ कि जहां जंगलों वाले भाग थे वहां पेड़ पौधों को काटकर आवास और खेती योग्य जमीन बनाई जाने लगी है। जंगलों के कटने से जो औषधि योग्य वनस्पतियां हैं वो नष्ट होने लगी हैं, वातावरण में प्रदूषण फैलने लगा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ गया है। तो इस तरह से आज ब्रह्मांडीय गर्मी जो है उसमें 50% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण है, और पेड़ पौधों और हरियाली से जो वातावरण जो है गर्म कम रहता है, बारिश होती है, उसमें भी जो है संकट आ रहा है। आपको बाढ़ की भी समस्या, अतिवृष्टि और अनावृष्टि की समस्या दिखाई देती होगी, बाढ़ के कारण भूमि का कटाव हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे जमीन पे, हमारी पृथ्वी पे संकट आ गया है, और हमारा पूरा जो तंत्र है वह छिन्न भिन्न हो गया है। सिंचाई की समस्या आप देखते होंगे कि समाप्त हो रही है जगह जगह। उसके अलावा दूसरा एक विकट प्रॉब्लम हमारे सामने समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं और प्रकृति का हमने दोहन भी शुरू कर दिया है। औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है लेकिन जल वायु आदि प्रदूषण में काफी विस्तार हुआ है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो इंडस्ट्री का कचरा है वह नदी में प्रवाहित किया जा रहा है जिससे कि जल प्रदूषण बढ़ गया है। गाड़ियों के कारण ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये सारे संकट हमारे सामने जनसंख्या के कारण आ रहे हैं। वायु प्रदूषण आप चारों तरफ देख सकते हैं, आम जीवन में जो कल कारखाने हैं या मोटर गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो वातावरण को खराब कर रहा है। दिल्ली और उसके आसपास जो पीएम लेवल है वह खतरनाक स्तर पर रहता है। तो ये सारे जो संकट हैं उसमें जनसंख्या की बहुत बड़ी भूमिका है। चारों तरफ जहरीली गैसें फैल गई हैं और लोगों में उसके कारण मानसिक विक्षिप्तता भी हो रही है, अस्थमा की बीमारी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, पौधों और वनस्पतियों पर भी उनका उल्टा असर हो रहा है। तो ये सारे जो संकट हैं वे बड़े ही चिंतनीय हैं और इसके लिए हम सभी को विचार करना चाहिए। आपने कूड़ा कचरा आदि से जो प्रदूषण होते हैं उसको भी देखा होगा, जो बहुत से मोहल्ले और बस्तियां हैं वहां आप देखेंगे कि कूड़े डाल दिए जाते हैं, लोग जागरूक नहीं होते हैं, इसीलिए स्वच्छता अभियान भी पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अनेक मच्छर और कीटाणु चारों तरफ फैलते हैं और डेंगू आदि अनेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण की जैसे मैंने बात की, तो आप बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे कि भयानक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों के कारण, हवाई जहाज आदि के कारण। इसके अलावा जो मैंने एक बिंदु दिया था कि ओजोन परत में छेद की आशंका है, क्योंकि जो ओजोन से उत्पन्न होने वाली गैस है वो पृथ्वी के चारों ओर एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह होती है। जब सूरज की रोशनी आती है तो ओजोन गैस उसकी हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको सोख लेती है, जिससे वनस्पतियों और जीवों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और सारी जहरीली गैसें फैल गई हैं, उसकी वजह से यह समस्या हो गई है कि ओजोन लेयर में छेद होने की संभावना हो गई है। और इसके अलावा आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, इन पांचों गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये गैसें पृथ्वी की सतह पर तापमान को संतुलित करती हैं और कृषि उत्पादन में भी सहायता करती हैं, लेकिन इनमें भी एक विकट समस्या आ गई है और कार्बन ऑक्साइड इतना अधिक उत्सर्जित हो रहा है जिसकी वजह से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई है। तो इन वजहों से और जंगलों के काटने की वजह से, वनस्पतियों के नष्ट होने की वजह से कृषि उत्पादन में भी काफी कमी आई है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण और भी जो प्रभाव पड़ा है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। हम जंगलों को काट रहे हैं, ऊर्जा के लिए कोयले की खपत कर रहे हैं अधिक से अधिक, या जो भूमि है उसे भी हम रासायनिक तत्वों की वजह से प्रदूषित कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि तरह तरह के खाद डाले जा रहे हैं आजकल मिट्टी में। पानी की कमी आप चारों तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कभी अधिक वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा हो रही है, ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं, नदियों में जल स्तर कम हो रहा है और पीने का पानी और सिंचाई के पानी की कमी हो रही है। तो यह सारी चीजें हमारे मानवता के लिए बहुत ही बाधक हैं। कृषि योग्य भूमि कम हो रही है जैसा मैंने बताया, क्योंकि आवास का निर्माण आजकल आप महानगरों में देखें तो आवास का निर्माण जगह जगह किया जा रहा है और जंगलों को काटा जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान देना चाहिए आपको, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। मैंने पहले भी बताया था कि जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक से अधिक अंधविश्वास फैलता जा रहा है और लड़कियां पैदा करते जा रहे हैं, जब तक लड़के नहीं होते हैं उसकी वजह से माताओं में कुपोषण की जो बीमारी है या मानसिक विकास भी रुक जाता है, उसके अलावा माँ कमजोर हो जाती है, तो इस तरह से कई असाध्य रोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो रासायनिक कचरे और घरेलू कचरे फैलाए जा रहे हैं उससे अनेक बीमारियां पैदा हुई हैं। अस्पतालों में आप देखेंगे तो इतनी भीड़ लग रही है और विज्ञान की इतनी प्रगति होने के बावजूद हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह अस्पतालों में आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें जो है प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी और बेकारी बढ़ गई है। हमारे देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, आर्थिक विकास उस गति से नहीं हो रहा है, और मैंने बताया कि कृषि योग्य भूमि भी कम हो गई है। तो इस तरह से गरीबी और बेकारी बढ़ती जा रही है। आए दिन आंदोलन चलते रहते हैं कि रोजगार दिया जाए। कैसे सरकार भी कैसे रोजगार दे सकती है जब जनसंख्या इतनी अधिक है और नौकरियां सीमित होती हैं। इसके अलावा एक और प्रभाव पड़ रहा है कि नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और अपराधीकरण भी बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी अधिक है इसलिए लोगों में आपस में वैमनस्य रहता है, स्वार्थों के लिए एक दूसरे की हत्या भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसी वजह से जो आपस में संबंध होने चाहिए प्रेम भाव के, वो समाप्त हो रहे हैं। तो संक्षेप में अगर हम देखें कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गर्भ निरोधक का प्रयोग। इसके अंतर्गत कंडोम या निरोध का प्रयोग हो सकता है, नसबंदी की जा सकती है, कॉपर टी का प्रयोग किया जा सकता है, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें जिनके बारे में पूरे देश में जागरूकता होनी चाहिए और इसके प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी भी दी जानी चाहिए, सरकार की ओर से भी और समाज की ओर से भी। दूसरा उपाय हो सकता है कि जनसंख्या के बारे में शिक्षा दी जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए। सरकार और जो स्वयंसेवी संगठन है दोनों मिलकर लोगों को जो जनसंख्या वृद्धि है उससे जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसकी जानकारी दें। स्कूलों में भी जनसंख्या शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जाए। इसके अलावा जो यौन शिक्षा है, वह यौन शिक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाए। महिला शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हमारे देश की बहुत सी महिलाएं जागरूक नहीं है और इसलिए निश्चित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों से बचाना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि जनसंचार माध्यमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। आप जानते हैं कि आजकल रेडियो और टेलीविजन जो है वह बहुत व्यापक रूप में सामने आ रहा है और उसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं का हल किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि लोग जो जागरूक लोग हैं वे गरीब इलाकों में या अनपढ़ इलाकों में जाकर लोगों को अगर शिक्षा देते हैं तो उसका भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की भी बहुत जरूरत है, जैसे वृक्षारोपण किया जाए, बिजली और तेल से चलने वाली मशीनों के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, वन्य जीवों का संरक्षण पर बल दिया जाए, प्रदूषण रहित गाड़ियों के निर्माण पर रोक लगाई जाए, औद्योगिक कचरे को नदियों में बहाने पर रोक लगाई जाए, उसके अलावा प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर बाल्यकाल से ही लोगों को इसके बारे में शिक्षा दी जाए तो शायद जन जागरूकता होगी और लोग इसकी बुराइयों को समझेंगे और जो भी सामाजिक संगठन है उन्हें आगे आना चाहिए और सरकार को भी इस बारे में तरह तरह की योजनाएं बनानी चाहिए और लोगों को दंड भी देना चाहिए ताकि लोग जागरूक बने और दंड से लोग कुछ लोग डरेंगे भी, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस तरह से मैंने इस पाठ को आपके सामने विस्तार से रखने की कोशिश की और उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको एक पृष्ठभूमि मिलेगी और आप अध्ययन सामग्री को पढ़कर और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और अंत में दिए गए प्रश्नों को भी हल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।